अध्याय और 36वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तथापि कीर्तयामि अंगा यथामति यथाश्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरम अन्याभिधा सतीम। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन चुका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है। जो ही चेतना शरीर को त्याग देती है तो ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अतः चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। प्रत्यक्षवादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाना वाला यह सिद्धांत कि चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है उनके अल्प ज्ञान का प्रमाण है। शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है तो निश्चय ही सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक व्यस्त ना हो चेतना का कोई अर्थ नहीं होता। चेतना क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती। जब शरीर कार्य नहीं करता होता है तो चेतना स्वप्नों के रूप में कार्य करती है। अचेतनता कृत्रिम है, बाह्य प्रेरणा से यह सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है या मनुष्य जग जाता है तो चेतना फिर से ठीक ढंग से कार्य करने लगती है। मैत्रेय का कथन है कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए वे भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे। यद्यपि उनको ठीक से वर्णित कर पाने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। भगवान की कीर्ति का गायन किसी शोध का परिणाम नहीं है, शोध मतलब रिसर्च, अपितु गुरु मुख से विनीत भाव से सुनने का परिणाम है। अपने गुरु से जो कुछ सुना हुआ रहता है उसे पूर्ण रूप से दोहरा पाना भी संभव नहीं है, किंतु भरसक प्रयास करके यथासंभव कुछ ना कुछ वर्णन किया जा सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह से हुआ है या नहीं। मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ऐसे कार्यकलाप अपवित्र तथा अशुद्ध बने रहेंगे। बद्ध जीव के जीवन मन तथा वाणी को भगवान की सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है। वैष्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी तीन दंड धारण करता है और ये तीन दंड शरीर मन तथा वाणी से भगवान की सेवा में लगने के व्रत के प्रतीक हैं, जबकि एक दंडी सन्यासी ब्रह्म से एकाकार होने का व्रत लेता है। चूंकि भगवान परम है अतएव उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है। वैष्णव सन्यासी द्वारा गाए जाने वाले भगवान की महिमाएं भगवान जैसी ही सारपूर्ण है, अतः भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त दिव्य रुचि में अभिभूत होकर उनसे एकाकार हो जाता है। ये ट्रांसलेशन इस लाइन का ठीक नहीं है, इंग्लिश में कुछ और मीनिंग है इसका, हिंदी में ट्रांसलेशन अच्छा नहीं किया ये इस लाइन का। वैसे अच्छा ट्रांसलेशन है, ये लाइन ठीक नहीं किया। यद्यपि वह शाश्वत रूप से दिव्य सेवक बना रहता है, भक्त की यह एक साथ अचिंत्य भेदाभेद स्थिति उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है और इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वप्रदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखानुदांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचरि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि मैत्री जी विदुर जी को शिक्षा दे रहे हैं और भगवान के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भगवान का विराट रूप कैसा है, भगवान के मुख से क्या प्रकट होता है, भगवान के भुजाओं से क्या प्रकट होता है, भगवान के उदर से, भगवान की टांगों से, और वेद कैसे प्रकट हुए, देवी देवताओं को कार्य करने की क्षमता कहाँ से मिली। तो ये सब वर्णन कर रहे थे और ये वर्णन करने के बाद विदुर जी ने इससे पिछले श्लोक में 35वें श्लोक में बोला कि देखो मैंने वर्णन किया है लेकिन पूरी तरह से वर्णन कर पाना संभव नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक झलक बता रहा हूँ, पूरा वर्णन पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और यहाँ पर इस बात को और आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि यद्यपि मैं असमर्थ हूँ, हाँ कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है बताने के लिए, फिर भी मैं जितना मैंने सुना है और जितना मैं समझ पाया हूँ मैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इससे पिछले श्लोक में आप देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अर्जुन का भी उद्धरण दिया कि किस प्रकार अर्जुन ने 11वें अध्याय में भगवद गीता के जब भगवान का दिव्य विराट रूप उन्होंने देख लिया तो उन्होंने कहा कि मैं देख तो रहा हूँ, हजारों मुख हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों हाथ, हजारों पैर, मैं देख रहा हूँ लेकिन ना तो मुझे इसका आदि दिख रहा है, ना मध्य दिख रहा है और ना ही अंत दिख रहा है। हाँ तो मैं देख रहा हूँ फिर भी ऐसा नहीं कह सकता कि पूरा देख लिया है ना। तो क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान अधोक्षज है, भगवान कृपा करके अगर दर्शन देते भी हैं तो भी ऐसा नहीं है कि जो दर्शन करने वाला भक्त है वो भगवान की महिमा को पूर्ण रूपेण समझ लेगा। हम देखते हैं कि देवी देवता अनेक बार भगवान के दर्शन करते हैं, नहीं? ब्रह्मा इंद्र इत्यादि जो शिव जी देवी देवता हैं इन्होंने भगवान के अनेक बार दर्शन किए फिर भी नहीं समझ पाते, फिर भी मोहित हो जाते हैं। मोहित होने का मतलब ये है कि या तो अपने बारे में उन्हें गलत फहमी हो जाती है कि वो भगवान से श्रेष्ठ हैं, या भगवान के बारे में उन्हें गलत फहमी हो जाती है कि भगवान में कुछ कमी है। हो सकता है कि ये भगवान के अंश हो या भगवान की शक्ति इनमें हो लेकिन ये मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब भगवान को जंगल वन में ग्वाल वालों के साथ कड़ी चावल खाते हुए देखा, दही की पदार्थ दही का व्यंजन था और चावल खा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि दही चावल खाने वाला ऐसे हाथ में लगा हुआ है, एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं सब, कोई इसके टिफिन में से निकाल रहा है, कोई उसके टिफिन में से निकाल रहा है, मतलब उस कृष्ण के कंधे पर चढ़ के लोग जो ग्वाल वाले हैं कृष्ण हारे जा रहे हैं उनसे और उनके कंधे पर चढ़ रहे हैं उनको सजा देने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? तो टेस्ट कर लेता हूँ, है ना। ऐसे ही भृगु मुनि भी भगवान को टेस्ट करने चले गए कि कौन जो ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन जो है सर्वश्रेष्ठ है। टेस्ट करने की क्या बात है, इतना वेद पढ़ने के बावजूद भी लोग समझ नहीं पाते भगवान की महिमा को, भगवान की कीर्ति को, भगवान के परम पद को। इसीलिए मैत्रेय जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं असमर्थ हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, मुझ में क्षमता नहीं है। मैत्रेय जी को छोड़िए, ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाते, और ब्रह्मा जी ने इस बात को माना। भागवतम के दशम स्कंद में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि और लोगों को दावा करने दो कि वो भगवान की महिमा को समझ लेंगे, और लोगों को दावा करने दो। अगर मुझ में ये क्षमता हो कि मैं पूरे ब्रह्मांड के हर एक कण को गिन लूं कि कितने कण हैं ब्रह्मांड में, अगर मुझ में ये क्षमता भी आ जाए तो भी मैं भगवान की जो महिमा है, जो भगवान के गुण है, जो भगवान का यश है, मैं तब भी उसको समझ नहीं सकता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, हम लोग क्यों भगवान की महिमा श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम भगवान को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब भक्त भगवान को समझने का प्रयास करता है तो वो यह भी हमेशा ध्यान रखता है कि भगवान को पूरी तरह से कभी भी समझा नहीं जा सकता। लक्ष्मी जी, बलराम जी जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, वो भी भगवान को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, वो भी भगवान की माया से, भगवान की शक्ति से मोहित हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल चुरा लिए थे सारे, और भगवान ने विस्तार किया, भगवान कृष्ण ने ग्वालों और बछड़ों के रूप में, तो बलराम जी एक वर्ष तक समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। मतलब जो गायें हैं कैसे इतना प्रेम दिखा रही हैं अपने बछड़ों से, पहले प्रेम दिखा रही थी लेकिन अब कुछ अद्भुत ही प्रेम है। नीचे बछड़े खेल रहे थे, ऊपर से गायों ने देखा अपने बछड़ों को और फुल स्पीड से भागी। कुछ कांटे कंकड़ पत्थर पेड़ पौधे कुछ भी उनको परवाह नहीं है, पूरी तेजी से दौड़ रही है बछड़ों से मिलने के लिए। तो बलराम जी सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक साल के बाद उनको समझ में आया कि ये मतलब जो बछड़े हैं, जो ग्वाल हैं, ये और कोई नहीं स्वयं कृष्ण है, है ना। तो बलराम जी तक जो है भगवान की जो महिमा को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भगवान सबके स्रोत हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार पुत्र पिता को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, क्योंकि पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ है, पिता पहले से विद्यमान है, पुत्र कभी भी नहीं जान सकता कि पिता ने क्या क्या जो कार्य किए हैं, नहीं। इसी प्रकार भगवान कितनी लीलाएं कर चुके हैं, कितनी लीलाएं कर रहे हैं, देवी देवता क्योंकि बार बार मनुष्यों की तरह हमारी तरह बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार शरीर छोड़ रहे हैं, तो देवी देवता जो हैं भगवान की महिमा को पूरी तरह समझ नहीं पाते। लेकिन समझने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने भगवान की महिमा को, अगर एक भगवान की महिमा के एक कण को भी अगर हमने समझ लिया, आप मान लीजिए कि भगवान की महिमा एक ब्रह्मांड के समान है, अगर हमने उस ब्रह्मांड रूपी महिमा का एक कण भी अगर हमने समझ लिया तो वो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप सोच सकते हो कि ये तो अतिशयोक्ति अलंकार लग रहा है, बढ़ा चढ़ा के बात को कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बढ़ा चढ़ा के नहीं बात को कहा जा रहा। चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने शिष्यों को अलग अलग समय पर शिक्षा दे रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं पूरी बात नहीं बता सकता, मैं तुम्हें कृष्ण यश रूपी सागर की एक बूंद ही दे रहा हूँ, मैं जो कृष्ण प्रेम रूपी सागर है उसकी एक बूंद दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये एक बूंद से क्या होगा, ये जो एक बूंद है कृष्ण प्रेम की पूरे संसार को कृष्ण प्रेम में डुबा सकती है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रॉब्लम ये है कि अभी हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, कमी हमारे में है, कमी कृष्ण प्रेम की उस बूंद में नहीं है, कमी हमारी समझ में है। इसीलिए यहाँ पर मैत्रेय जो मुनि है वो कह रहे हैं कि मैं असमर्थ हूँ, मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा। ये जो वाक्य है कि मैं असमर्थ हूँ, इससे दो बात समझ में आती है। पहली बात समझ में आ रही है कि जो मैत्रेय ऋषि हैं उनको अपनी स्थिति के बारे में जानकारी है कि वो अणु हैं, तुच्छ हैं, हाँ। और दूसरी बात यह है कि वो सच बोल रहे हैं, उनको कुछ शर्म महसूस नहीं हो रही है कहने में कि मैं पूरी तरह से नहीं समझ सकता। और इससे मैत्रेय मुनि की विनम्रता का भी आभास हो रहा है कि मैत्रेय मुनि कितने विनम्र हैं। कल हम विनम्रता की बात कर रहे थे कि विनम्रता कौन भक्त विनम्र है, तो हम चर्चा में ये बात निकली कि विनम्रता जो है कोई एक लक्षण नहीं है विनम्रता का। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बहुत ही सबको झुक के प्रणाम कर रहा है तो ये विनम्र है, या ऐसा नहीं कह सकते जो सच बोल रहा है वही विनम्र है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि सच बोलना विनम्रता का नहीं अहंकार का परिचायक हो, सच बोलना विनम्रता का नहीं ईर्ष्या का परिचायक हो। अगर किसी वैष्णव में कोई कमी है, एक्सीडेंटली अचानक कोई वैष्णव से कुछ गलती हो जाए तो उसकी गलती का प्रचार करना क्या विनम्रता है कि देखो मैं तो सच बोल रहा हूँ, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सच बोलना विनम्रता का प्रचारक है, कई बार सच बोलना पाप भी है। अगर किसी की प्राण की रक्षा हो रही हो तो झूठ बोला जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति था, उसको अपने सच बोलने पे बहुत अभिमान था, ये हमारे पुराणों में कथा आती है। तो कुछ लोग थे, उनके पीछे डाकू लग गए, तो भागते भागते उनके आश्रम में आए और छुप गए। तो उन्होंने बोला उनको बताना मत कि कहाँ छुपे हैं। तो डाकू आए, उन्होंने बोला आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप तो हमेशा सच बोलते हो, फटाफट बताओ कहाँ छुपे हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ छुपे हैं, उन्होंने पकड़ के उनको मार दिया। ऐसे सच बोलने से क्या फायदा है। सो ऐसा नहीं है कि हमेशा सच बोलना ही विनम्रता का जो परिचायक है, या झुके रहना विनम्रता का परिचायक है। विनम्रता एक बहुत सारे लक्षणों का मिश्रण है, और भक्त किस तरह व्यवहार कर रहा है, किस तरह आचरण कर रहा है, किस प्रकार अपने जीवन को बिता रहा है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कि किसी एक घटना से हम नहीं कह सकते कि व्यक्ति विनम्र है या ये व्यक्ति अभिमानी है, किसी एक घटना से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कई बार आप किसी वैष्णव के पास जाओ, सीनियर भक्त के पास, उनको बोलो मुझे आपसे कुछ पूछना है, बोला भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अहंकारी या अभिमानी है, हाँ, उसको अपने गरूर है, बड़ा घमंड है उसको कि उसके 100-500 लोग उससे पूछ रहे हैं, उससे मार्गदर्शन ले रहे हैं। हो सकता है बिजी हो, किसी सेवा में लगाओ, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, है ना। ऐसे कल हम ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर गए थे, तो वहाँ पे मोहन रूपा प्रभु से हमने रिक्वेस्ट किया कि वो कुछ थोड़ा प्रवचन करें, तो इतनी ख़राब थी उनकी तबीयत। पहले उन्होंने मना किया, फिर दया आई उनको, तो 10 मिनट का उन्होंने समय दिया। लेकिन अगर वो समय नहीं भी देते तो भी हम समझ लेते कि उनकी तबीयत ख़राब है। हम ऐसा नहीं निष्कर्ष निकाल सकते, देखो हमने कितने विनीत भाव से उनको रिक्वेस्ट किया था लेकिन वो समय नहीं दे पाए, है ना। सो विनम्रता का जो लक्षण है, ये लक्षण भी है कि अपने बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, और हमारी जो स्थिति है, जो हमारी सही स्वाभाविक हमारी स्थिति है, वो क्या है कि हम घास के तिनके से भी नीच है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भक्त को हमेशा सोचना चाहिए, त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। क्यों? क्योंकि जो भक्त सोचता है कि जो घास का तिनका है ये तो भगवान की संपत्ति है, और मैं अपने आप को भगवान से स्वतंत्र मानता हूँ। जो भक्त है वो उस तिनके को भगवान की संपत्ति समझ रहा है, और अपने आप को सोचता है कि मेरी मानसिकता जो है वो भगवान से स्वतंत्र जीने की है, तो वो तिनका मुझसे श्रेष्ठ है। नहीं, कोई उस पर पैर रखता है तो भी प्रतिरोध नहीं करता, दब जाता है, है ना, और कुछ कहता भी नहीं, और ध्यान से मुझ पर पैर रखने वाले मुझे कुचल दो कहते। सो जब तक भक्त में ये विनम्रता नहीं होगी, और विनम्रता का एक लक्षण और क्या है जो इस श्लोक से हमें पता चल रहा है, भक्त की विनम्रता का लक्षण है कि विनीत भाव से अपने गुरु से सुनना। जब तक हम विनीत भाव से गुरु से सुनेंगे नहीं, और जो हमने सुना, सुनते समय हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि जो बोला जा रहा है व्यास आसन से, या गुरु जो प्रवचन दे रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं कह रहे, वो मेरे लिए ही कह रहे हैं, है ना। मुझ में कमियां हैं, मुझे सावधान किया जा रहा है। अगर हम सोचेंगे कि किसी और के लिए कहा जा रहा है, तो वो हम प्रगति आध्यात्मिक जीवन में नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे लिए ये बात कही जा रही है, मुझ में कमी है, मुझे इस कमी पर कार्य करने की आवश्यकता है, तो हमारा जो वो सुनना है, वो सुनना हमारा सफल माना जाएगा। और गुरु से सुनने के लिए हर चीज़ छोड़ी जा सकती है। भगवान के दर्शन से भी अधिक महत्वपूर्ण है गुरु से सुनना। भगवान के दर्शन आँखों से नहीं किए जा सकते, भगवान के दर्शन कानों से किए जा सकते हैं। जब तक हम गुरु से ये नहीं समझ लेंगे कि भगवान के दर्शन किस प्रकार करने हैं, और भगवान अगर सौभाग्य से सामने आ ही गए तो हमें कैसा व्यवहार करना है, तो भगवान के दर्शन करने का लाभ ही क्या है। अगर भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान ने दर्शन दे दिए, हम भगवान के दर्शन कर नहीं सकते, लेकिन भगवान हमें दर्शन दे जरूर सकते हैं। लेकिन जब भगवान ने दर्शन दिया, और उस समय हम भगवान से जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है अगर हम नहीं मांग पाए, तो भगवान के दर्शन करना व्यर्थ हो जाएगा। जैसा हम इंद्र के उदाहरण से देख सकते हैं, जब भगवान वामन देव के रूप में इंद्र के पास गए, तो इंद्र ने शुद्ध भक्ति नहीं मांगी। इंद्र ने उनको बोला कि बलि जो है असुर हमारा राज्य छीन लिया है, हम सुख से नहीं रह पा रहे हैं, तो आप हमें वो बलि से हमारा राज्य वापस दिलवाइए। भगवान की सेवा करने के स्थान पर इंद्र ने भगवान से सेवा ली। भगवान की सेवा करनी चाहिए, जबकि इंद्र ने भगवान को अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया। तो ऐसे दर्शन का कुछ खास लाभ नहीं होता। अगर हम अपनी भोग दृष्टि के ऊपर बहुत ज़्यादा केंद्रित हैं, अगर हम अपने बारे में सोच रहे हैं, तो पश्यन अपि न पश्यति, हम भगवान को देख भी लेंगे तो भी भगवान को देख नहीं पाएंगे। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को अनेक बार देखा, लेकिन क्योंकि आसक्ति का, भोग का उसने चश्मा लगा रखा था, इसलिए भगवान को ठीक तरह से देख नहीं पाया और उसका चित्त जो है शुद्ध नहीं हो पाया। इसलिए भगवान को समझने की सही विधि है यथाश्रुतम, यथाश्रुतम, जैसे श्रुतम। श्रुतम बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें गुरु से और जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बात पहले सुनी हुई है। कोई बात नहीं, पहले सुनी हुई है, क्या हमने उसको जीवन में उतारा? क्या हमने सुनने के बाद हमने उस जो ज्ञान है जो हमने सुना था उस ज्ञान का हमने क्या किया? जब तक हम सुनने के बाद उस पर मनन नहीं करेंगे, उस पर चिंतन नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है, जब तक हम इस बारे में ध्यान नहीं लगाएंगे और भक्तों से चर्चा नहीं करेंगे इस बारे में, तो जो हमने सुना है वो हमारे पास रह नहीं पाएगा। हमने सुना तो हमारे हाथ में एक चीज़ आ गई, लेकिन अभी वो वस्तु, वो ज्ञान अभी हमारी संपत्ति नहीं बनी है। हमने सुन तो लिया है लेकिन समझ नहीं पाए हैं, है ना? जिस प्रकार महाभारत का दृष्टांत है कि द्रोणाचार्य ने जो है सभी जो कौरव और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि द्रोणाचार्य ने एक शिक्षा दी सभी कौरवों और पांडवों को, तो उन्होंने बोला समझ में आ गई? तो सभी ने बोला हाँ, आपकी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मैं नहीं समझ पाया अभी, मुझे ये जो आपकी जो शिक्षा है अभी स्पष्ट नहीं हुई, मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा क्या आप में से किसी को पता है क्या बोला था? चलो कोई नहीं। कुछ दिन उस पर मनन करने के बाद फिर युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने बोला कि अब मैं बात को समझ गया। तो जब तक हम किसी बात को आत्मसात नहीं कर लेंगे, किसी बात को अच्छी तरह से समझ नहीं लेंगे, उसको अपने जीवन में नहीं उतार लेंगे, तब तक वो जो ज्ञान है वो हमारी संपत्ति नहीं माना जाएगा। वो संपत्ति का अर्थ है जो आपसे कभी भी अलग नहीं की जा सकती, है ना? संपत्ति का अर्थ है कि अब आप का उस ज्ञान पर, उस वस्तु पर पूरा अधिकार है। अगर हम सुनते हैं लेकिन हम भोग और आसक्ति का चश्मा लगाकर, पर्दे लगाकर अगर हम उसको सुन रहे हैं, तो सुनते हुए भी हम उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। आज हमने सुना है, कल हम उसको भूल जाएंगे। तो सुनना विनीत भाव से चाहिए। विनम्रता का यहाँ पर एक अर्थ ये भी आता है कि हम जो गुरु से सुन रहे हैं, जो वरिष्ठ भक्तों से सुन रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो जो अपने जीवन में उसको उतारेगा वो व्यक्ति विनम्र है। जो अपने जीवन में नहीं उतारने का प्रयास कर रहा, क्या उसको विनम्र कहा जा सकता है? चाहे वो दूसरे भक्तों को देख के दंडवत ही करना शुरू कर दे, लेकिन अगर वो गुरु की शिक्षा को, गुरु के आदेश को, वरिष्ठ भक्तों के आदेश को, शिक्षाओं को अगर अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर रहा, तो ऐसी खोखली विनम्रता का कुछ मतलब नहीं है। और यहाँ पर विनम्रता का एक और लक्षण दिया गया है, यहाँ पर जो मैत्रेय जी कह रहे हैं कि कीर्ति हरे स्वाम सत्कर्तुम, कि मैं जो यथाश्रुतम, जो मैंने सुना, यथामति, जो मुझे समझ में आया, मैं उसको बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। सो विनम्रता का एक लक्षण ये भी है। यहाँ पर दो बातें हैं, जब हम कृष्ण शिक्षा की बात करते हैं तो दो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पहली बात यह है कि हर व्यक्ति को यथासंभव कृष्ण शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। पहली बात यह है, जितना भी आपको जानकारी है उतना प्रचार करना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, यथाश्रुतम, जैसा सुना वैसा ही आगे जाकर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ सुना और उसमें कुछ खिचड़ी मिला दी और आगे जाके किसी को परोस दिया। यथाश्रुतम, जैसा सुना। और जैसा सुना में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। हम लोग चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम लोग भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु हमें मुक्ति देने के लिए नहीं आए हैं। मुक्ति देने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत अवतार हैं मुक्ति देने के लिए। अब मुक्ति चाहिए तो हम अवतार का पालन करो, हम अवतार की शिक्षाएं उनका पालन करो, अगर मुक्ति चाहिए। चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो दिव्य, वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु देने के लिए जो करोड़ों अरबों वर्षों में किसी ने नहीं दी। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने आए हैं, लेकिन सिर्फ कृष्ण प्रेम देने नहीं आए हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु माधुर्य भाव में कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, जो आज तक कभी चैतन्य महाप्रभु से पहले किसी ने भी प्रदान नहीं की, जो भाव चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, गोपीर भरतुर पद कमले और दास दासनो दास, जो भाव, जो गोपी भाव, गोपियों की सेवा करने का भाव जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, अगर हम चैतन्य महाप्रभु की गुरु परंपरा में, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित परंपरा है, तो इस्कॉन श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं, जो इन शिक्षाओं को अच्छे से नहीं सुनता, इन शिक्षाओं में पूरी निष्ठा नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी विनम्र नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से आकर्षित होकर इस कौन से जुड़ते तो हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें प्रभुपाद की शिक्षाएं फीकी लगनी शुरू हो जाती हैं, उनको प्रभुपाद की शिक्षाओं में रस नहीं आता। क्या शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं में रस नहीं है? शिला प्रभुपाद की शिक्षाएं रस से भरी हुई हैं, शिला प्रभुपाद की शिक्षाएं जीवन से भरी हुई हैं, लेकिन हम में कमी है, हम में अहंकार है, इसलिए हम शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं को कई बार हमें लगता है कि फीकी हैं, एक ही बात बार बार बोले जा रहे हैं, हम शरीर नहीं आत्माएं, हम शरीर नहीं आत्माएं, हम शरीर नहीं आत्माएं। कितनी बार सुने इस बात को? 1 करोड़ बार सुनिए, क्योंकि हमने जितनी बार भी सुना, हमने सुना लेकिन चिंतन नहीं किया, उसको अपने जीवन में हमने उतारा नहीं है। तो जो व्यक्ति, जो भक्त इस कौन में जुड़ते हैं और दीक्षा लेते हैं, प्रचार करते हैं इस कौन में, लेकिन शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं, जो शिला प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी शिक्षाओं के अलावा वो दूसरे संप्रदायों से जाकर सुनते हैं, वो भी विनम्रता का परिचय नहीं है। हमें श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं के प्रति पूरी निष्ठा दिखानी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बार बार कहा कि मैंने अपने ग्रंथों में सारी बातें बता रखी हैं, अगर हम इसमें से वो बात नहीं निकाल पा रहे, वो रस नहीं निकाल पा रहे, तो कमी श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में नहीं है, कमी हमारी समझ में है। और वो कमी दूर होगी ऐसे भक्तों का संग करने से जिनकी जो श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान है। ऐसे भक्तों का संग करके निष्ठा नहीं मिलेगी जो श्रील प्रभुपाद के प्रति निष्ठावान नहीं है। श्रील प्रभुपाद के प्रति निष्ठावान का अर्थ है जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को सर्वोपरि मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसको ये पता है कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं में पूर्ण ज्ञान है, जीवन की सफलता प्राप्त करने की पूरी रास्ता, पूरी शिक्षा श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में प्रदान किया। उनको देखने की दृष्टि हमें श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को बार बार पढ़ने से, और जो भक्त श्रील प्रभुपाद के प्रति निष्ठावान है उनका संग करने से हमें हम देख पाएंगे कि श्रील प्रभुपाद किस प्रकार जो है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में माधुर्य रस भी है, दास्य रस भी है, साख्य रस भी है, वात्सल्य रस भी है। हमें अपने समझ को बढ़ाना होगा, अपने समझ को शुद्ध करना होगा कि हम श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं में, ग्रंथों में ये सब शिक्षाएं, ये सब रस देख पाए। और अगर हम अभी नहीं देख पा रहे हैं तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी निष्ठा कायम रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो शिष्य को, जो गुरु हैं वो शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गुरु के पास गए, उन्होंने बोला कि मुझे दिव्य ज्ञान दो, सिर पे हाथ रखा और दिव्य ज्ञान ट्रांसफर कर दिया। ऐसा नहीं होता। दिव्य ज्ञान गुरु तब प्रदान करता है जब गुरु भक्त की, शिष्य की सेवा से, समर्पण से सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद को संतुष्ट करने का प्रयास करें, गुरु को संतुष्ट करने का प्रयास करें। अगर हम श्रील प्रभुपाद और गुरु को अगर हम संतुष्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो चाहे हम बाहरी रूप से कितना ही विनम्रता का प्रदर्शन करें, वो ढोंगी है। वास्तविक विनम्रता है गुरु की शिक्षाओं को बहुत ही समर्पित भाव से सुनना और उसको अपने जीवन में उतारना। ठीक है, यहीं पे हम इसे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। सो प्रश्न ये है कि क्या शिक्षा गुरु को दीक्षा गुरु जितना सम्मान देना चाहिए? यही प्रश्न है आपका, है ना? हाँ, सम्मान देना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा गुरु को दीक्षा गुरु जितना सम्मान तभी तक देना चाहिए जब तक हम ये देख पा रहे हों कि जो शिक्षा गुरु है वो अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। अगर शिक्षा गुरु की शिक्षाओं में दीक्षा गुरु से अगर अलगाव दिखाई देना शुरू हो जाए, हमारी जो निष्ठा है वो गुरु में, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं उनमें निवेशित होनी चाहिए। सो जब तक शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के संदेश को ठीक से प्रस्तुत कर रहा है, श्रील प्रभुपाद के संदेश को अच्छे से प्रस्तुत कर रहा है, अच्छे से आचरण कर रहा है, तब तक हमें उसको अच्छे से सम्मान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम निष्ठा की बात करें, निष्ठा हमारी सदैव हमारे दीक्षा गुरु में निवेशित रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि इस्कॉन जो है प्रचार की संस्था है, तो बहुत सारे भक्त प्रचार में आगे आते हैं और प्रचार करते समय कई बार भक्तों का दुर्भाग्य से पतन भी हो जाता है। तो अगर हम शिक्षा गुरु से बहुत ज़्यादा अगर जुड़े होंगे, बहुत ज़्यादा आसक्त होंगे अगर, तो उसके पतन का प्रभाव होता है कि हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। तो शिक्षा गुरु का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी शिक्षाओं को विनीत भाव से सुने, लेकिन जो हमारी जो निष्ठा है, निष्ठा हमारी हमारे दीक्षा गुरु में और श्रील प्रभुपाद में निवेशित रहनी चाहिए, ठीक है। सो उससे अगर हमारे जो हमें शिक्षा दे रहे हैं भक्त, अगर उनमें कुछ कमी भी हमें दिखाई देगी तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी निष्ठा श्रील प्रभुपाद और हमारे दीक्षा गुरु में निवेशित है और दृढ़ भाव से हम स्थित रहें, नहीं तो हमें समस्या आ सकती है, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा इन्होंने पॉइंट उठाया कि ऐसे लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच, वही बॉल फेंक रहे हैं, वैसे ही शॉट लगा रहे हैं, वैसे ही आउट होते आ रहे हैं लोग, फिर भी लोग बार बार उसको देखते रहते हैं, नहीं लोग उससे बोर नहीं होते। लेकिन जब हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं तो वो सुनने से उसमें हमें रुचि नहीं आती, बार बार सुनने से हमें परेशानी होती है ना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भगवान का नाम है, वो मिश्री से भी मीठा है, लेकिन हमें अभी जॉन्डिस है, हम पीलिया रोग है हमें। सो क्योंकि पीलिया रोग है, इसलिए दिव्य ज्ञान नित्य नवीन होने के बावजूद हमें बासी लगता है। तो क्योंकि हमारे अभी जो एंटीना है, हमारे जो रिसीव करने के जितने भी यंत्र हमारे शरीर में लगे हैं, वो सारे यंत्र अभी डिफेक्टिव हैं, दूषित हैं, है ना। लेकिन इसको ठीक करने का इलाज जो है, वो भी जिस प्रकार पीलिया रोग में मीठी चीज़ भी कड़वी लगती है, लेकिन उसका इलाज भी यही है कि मिठाई, मीठा वस्तु आप बार बार मिठाई चूसते रहो। उसी प्रकार यद्यपि अभी हमें दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, हरि नाम, अभी हमें उसमें रुचि नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन उसका इलाज यही है कि हम बार बार उसको सुनते रहें, बार बार सुनते रहें। जब हम बार बार उसको श्रवण करते रहेंगे, इसके लिए संकल्प की और निष्ठा की आवश्यकता है। ये निष्ठा होनी चाहिए, जिस प्रकार हमने प्रवचन में भी अभी बात किया कि जो भी लेक्चर हो रहा है, जो भी शिक्षा दी जा रही है, सिर्फ मेरे लिए दी जा रही है, बाकी सब तो अच्छे भक्त हैं, सिर्फ मैं ही अभी पीछे चल रहा हूँ, है ना। और भक्तिनो ठाकुर इस बारे में कह रहे हैं कि असुर सकल पायलो शरण, विनोद ठाकुर, विनोद थाकेलो बोशी, ऐसे कुछ है ना, कि सारे असुरों का कल्याण हो गया, एक भक्तिनो ठाकुर ही बैठा हुआ है। भक्तिनो ठाकुर भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा, कितनी विनम्रता का भक्त। तो भक्तिनो ठाकुर बता रहे हैं कि भक्त को कैसे सोचना चाहिए कि सब लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, एक मैं ही नहीं भक्ति में आगे बढ़ रहा है। सो हमें बार बार सुनना चाहिए, जो हमें रुचि नहीं आ रही है वो रुचि हमारी कमी की वजह से आ रही है, आध्यात्मिक ज्ञान में रस की कमी की वजह से नहीं है, हमारे में कमी है, हमारी भोग वृत्ति आसक्ति इतनी प्रबल है और इतनी प्रगाढ़ है कि उसको छेद पाना बहुत मुश्किल है। और उसको छेद पाने, ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक शिक्षा उसको नहीं छेद पा रही, हम आध्यात्मिक शिक्षा की जो तलवार है हम उसको चला ही नहीं रहे हैं। हमारे हाथ में तलवार आ गई है, हम उसको चला नहीं रहे हैं उसको काटने के लिए, है ना। तो भगवान क्यों नहीं काट रहे उसको? और भगवान इसलिए नहीं काट रहे कि भगवान ये चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से उसको काटें। सो आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि कम रहती है, भौतिक भोगों में रुचि ज़्यादा रहती है। बार बार उसी वस्तु को देखने से भी हमारी रुचि घटती नहीं है भौतिक वस्तुओं में, क्योंकि हमारे इतने बद्ध हैं हम, हमारे इतनी कंडीशनिंग है, इतनी प्रबल है हमारी बद्धावस्था कि हम उसी में से जो चबाई जा चुकी है चीज़ उसको बार बार चबा कर हम उसमें से रस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसको दूर किया जा सकता है बार बार आध्यात्मिक ज्ञान को सुन के और श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन करके। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक बार पढ़ तो ली भगवद गीता या एक बार भागवतम पढ़ तो लिया, अभी दोबारा से क्यों पढ़ें। आप दोबारा पढ़ेंगे, आप 50 बार पढ़ेंगे तो 51वीं बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पहली बार ही पढ़ रहा हूँ मैं, ये बात पहले तो मैंने देखी नहीं, ये नई चीज़ है ये। सो क्यों नई चीज़ है? क्योंकि हम जैसे जैसे आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम जो शिक्षाएं प्रभुपाद ने दी हैं उसको हम और भी अच्छे से समझ पाते हैं। कई बार श्रील प्रभुपाद ने इतने सरल शब्दों में आध्यात्मिक ज्ञान दिया है कि बहुत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त किया है। तो क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त किया है इसलिए कई बार हम उसे महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो हमें उन सरल वाक्यों का महत्व दिखाई देना शुरू हो जाता है, है ना। तो हम उस पर और अधिक ध्यान देते हैं, उसको और अच्छे से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और हम भक्ति में आगे प्रगति करते हैं, ठीक है। सो थोड़ा लेट भी हो गया।